एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथसार में आज आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे लेखक की बात कर रहे हैं जिनकी कलम पाठक को अंदर तक हिला देती है, कॉर्मैक मैकार्थी।
हाँ, कॉर्मैक मैकार्थी, और खास तौर पर उनकी जो रचना है द रोड, मेरे ख्याल से इसने साहित्य जगत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
बिल्कुल, मैकार्थी का नाम आते ही एक खास तरह का स्टाइल याद आता है ना, बहुत कसा हुआ गद्य।
हाँ, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कहना, और वो संवाद लिखने का तरीका बिना किसी कोटेशन मार्क्स के।
हाँ, वो तो उनकी पहचान है। और जीवन की जो कठोर सच्चाइयां हैं, खासकर हिंसा,
हाँ,
उसका बड़ा बेबाक चित्रण मिलता है।
इसीलिए तो उनकी तुलना विलियम फॉकनर और हरमन मिलविल जैसे बड़े नामों से होती है, वो लीग ही अलग है।
सही कहा, उनके काम में ये चीजें बार बार दिखती हैं, जैसे भाग्य और इच्छा शक्ति का टकराव, अच्छाई और बुराई की लड़ाई,
हाँ, चाहे वो ब्लड मेरिडियन हो या ऑल द प्रिटी हॉर्सेस
या फिर नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, सब में ये गहरे सवाल दिखते हैं।
और द रोड, ये 2006 में आई थी, उन्होंने अपने बेटे जॉन फ्रांसिस को समर्पित की है।
दिलचस्प बात यह है कि ये उनकी जानी पहचानी वेस्टर्न सेटिंग से थोड़ी अलग है, लेकिन वो जो फिलोसॉफिकल गहराई है
वो शायद और भी ज्यादा है इसमें।
बिल्कुल,
और दुनिया भर में इसे सराहा भी खूब गया।
2007 का पुलित्जर प्राइज मिला इसे।
हाँ, और ओपरा के बुक क्लब में भी शामिल हुई। ये बस एक, आप कह सकते हैं, पोस्ट अपोकलिप्टिक कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पिता पुत्र के रिश्ते की कहानी है, उम्मीद की कहानी है,
और शायद इंसानियत के मायने क्या हैं, इस पर एक बहुत गहरा सवाल उठाती है।
तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस पावरफुल और दिल को छू लेने वाली कहानी की परतें खोलें, इसके किरदारों को समझें, उनके सफर को और जो गहरे संदेश इसमें छुपे हैं उन तक पहुंचें।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस दुनिया की बात करते हैं जहां ये कहानी घट रही है। वो माहौल कैसा है?
तो सोचिए एक ऐसी दुनिया जो लगभग खत्म हो चुकी है, कोई भयानक कहर आया है।
हाँ, पता नहीं क्या, शायद न्यूक्लियर वॉर या कोई बड़ा ज्वालामुखी फटा हो, कुछ साफ नहीं बताया गया है।
पर उसके बरसों बाद का समय है, आसमान में सूरज भी ठीक से नहीं दिखता, जैसे धुंधला सा हो, राख की वजह से शायद।
पूरी धरती राख की एक मोटी भूरी चादर में लिपटी हुई है, एक भयानक सपने जैसा मंजर।
बिल्कुल, जंगल सब जल चुके हैं, ठूंठ खड़े हैं, शहर खंडहर हैं, नदियां भी जम गई हैं,
हर तरफ बस मौत और वीरानी।
और इसी वीराने के बीच है कहानी के दो मुख्य किरदार, एक पिता और उसका छोटा बेटा। दोनों के नाम भी नहीं बताए गए हैं।
बेटा तो शायद पैदा ही इस तबाही के बाद हुआ है, उसने पुरानी दुनिया देखी ही नहीं।
हाँ, और ये दोनों दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, समंदर के किनारे की ओर, एक बहुत मुश्किल सफर पर।
बस एक हल्की सी उम्मीद है मन में कि शायद दक्षिण में थोड़ी गर्मी मिले, शायद जिंदगी कुछ बेहतर हो।
ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक तरह से अस्तित्व की तलाश है।
और उनके पास है क्या? कुछ भी तो नहीं, फटे पुराने कपड़े, एक कंबल
और एक पिस्तौल जिसमें सिर्फ दो गोलियां बची हैं।
सोचिए, सिर्फ दो गोलियां, एक शायद दुश्मनों के लिए और दूसरी
शायद अपने लिए, आखिरी रास्ते के तौर पे। और एक शॉपिंग कार्ट है जिसमें वो रास्ते में मिला कुछ सामान, खाने की चीजें रखते हैं।
उनका हर दिन एक जंग है, भूख से, ठंड से और उस नाउम्मीदी से जो हर तरफ फैली है।
इस संघर्ष को अगर थोड़ा और समझें तो ये दो लेवल पर चल रहा है। एक तो है सीधा शारीरिक संघर्ष।
हाँ, मतलब खाने पीने का जुगाड़ करना, रात को सोने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढना, यही अपने आप में बहुत बड़ा काम है।
लेकिन खतरा सिर्फ माहौल से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा तो शायद बचे हुए इंसानों से है।
बिल्कुल, क्योंकि जब सभ्यता खत्म होती है तो इंसानियत भी पीछे छूट जाती है। कई लोगों के लिए बहुत से लोग वैशी ग्रोहों में बदल गए हैं, नरभक्षी बन गए।
तो पिता और बेटे को लगातार छिपना पड़ता है, भागना पड़ता है, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। वो बुरे लोग, वो हर जगह हैं।
ये तो हुआ बाहरी संघर्ष।
हाँ, और दूसरा संघर्ष जो शायद इससे भी ज्यादा मुश्किल है, वो अंदर का है, नैतिक संघर्ष, आध्यात्मिक।
अच्छा, वो कैसे?
मतलब ऐसी दुनिया में जहां अच्छाई, दया, करुणा, ये सब चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं, वहां अपने अंदर इन चीजों को जिंदा कैसे रखा जाए? उपन्यास में एक बात बार बार आती है, आग जलाए रखना, कैरिंग द फायर।
हाँ, मैंने पढ़ा है, ये क्या है आग?
ये एक प्रतीक है, सिंबल, उस अंदरूनी आग का, मानवीयता की, करुणा की, प्रेम की, उम्मीद की, उस छोटी सी चिंगारी का जो उनके अंदर अभी भी बाकी है।
अच्छा,
पिता का मिशन सिर्फ बेटे को जिंदा रखना नहीं है, उसकी आत्मा को बचाना भी है, उसकी इंसानियत को बचाना है।
ये पक्का करना कि वो हमेशा अच्छे लोग बने रहें। गुड गाइज।
हाँ, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, तो उनकी ये जो यात्रा है ना, ये एक तरह की तीर्थ यात्रा बन जाती है, मानवता के असल मतलब की खोज में।
पिता का जो किरदार है वो पूरी तरह से बेटे के लिए जीता है। उसका एक ही मकसद है, बेटे की जान बचाना।
बहुत दृढ़ निश्चयी है, बहुत प्यार करने वाला, एक प्रोटेक्टर।
लेकिन वो खुद भी टूट रहा है अंदर से। उसे लगातार खांसी आती रहती है, लगता है कोई गंभीर बीमारी है उसे। उसका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा है।
और सिर्फ शरीर ही नहीं, मन भी एक कश्मकश में है। उसे जिंदा रहने के लिए, बेटे को बचाने के लिए बहुत कठोर, यहाँ तक कि क्रूर फैसले लेने पड़ते हैं।
हाँ, वो किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाता अगर बेटे पर आंच आए।
लेकिन हर बार जब वो ऐसा कुछ करता है तो उसके अंदर की वो आग, वो थोड़ी कमजोर पड़ती है। वो एक बहुत महीन सी लाइन पर चल रहा है, जहाँ एक बचाने वाला और एक दरिंदा, इनके बीच का फर्क मिटने लगता है।
उसे पुरानी दुनिया की यादें भी बहुत आती हैं। वो बेटे को उस दुनिया की कहानियां सुनाता है जो बेटे ने कभी देखी ही नहीं।
जैसे वो गुजरे वक्त की अच्छाइयों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन उसका सबसे बड़ा डर शायद यही है कि अगर उसे कुछ हो गया तो बेटा इस बेरहम दुनिया में अकेला कैसे रहेगा।
और उसकी पत्नी की यादें, जिसने शायद निराशा में आत्महत्या कर ली थी।
हाँ, वो यादें भी एक बोझ की तरह हैं। बेटा ही उसके जीने की वजह है, उसका वारंट, जैसा वो सोचता है। अगर मैं उसके लिए नहीं हूं तो मैं क्या हूं?
क्या लाइन है ये।
और बेटा, वो इस अंधेरी कहानी में एक रोशनी की तरह है। उपन्यास का नैतिक केंद्र वही है।
बिल्कुल।
वो उम्मीद है, मासूमियत है, और एक स्वाभाविक अच्छाई का प्रतीक है।
उसका सफर भी आसान नहीं है। वो बहुत छोटी उम्र में ऐसी भयानक चीजें देख रहा है।
हाँ, जो किसी बच्चे को नहीं देखनी चाहिए। पिता जहाँ अतीत में थोड़ा उलझा हुआ है, बेटा भविष्य की तरफ देख रहा है, अनजाने में ही सही।
उसे एक मॉरल कंपस कह सकते हैं ना। वो बार बार पिता से पूछता है, क्या हम अभी भी अच्छे लोग हैं?
हाँ, और ये सवाल पिता के लिए एक आईना है, एक चुनौती है।
बेटे की यही मासूमियत और करुणा उसे दूसरों की मदद करने को कहती है, जैसे वो बूढ़ा आदमी आली मिलता है उन्हें, या वो चोर।
जबकि पिता बहुत ज्यादा शक्की है, उसे किसी पर भरोसा नहीं। यही एक तनाव भी पैदा होता है दोनों के बीच।
पिता तो उसे लगभग भगवान की तरह मानता है, ईश्वर का शब्द कहता है।
और धीरे धीरे बेटा खुद उस आग को सहेजना सीख रहा है। वो इस बात का सबूत है कि भयानक हालातों में भी अच्छाई जिंदा रह सकती है।
इन दोनों के अलावा माँ का जिक्र तो हमने किया, वो यादों में आती हैं।
हाँ, वो एक तरह से तर्कसंगत निराशा का प्रतीक है, जिसने मौत को चुना, इस धीरे धीरे खत्म होने से बेहतर समझा। उसकी याद पिता को कचोटती भी है, और शायद लड़ने की ताकत भी देती है, क्योंकि पिता ने ठीक उसका उल्टा रास्ता चुना है।
और फिर वो लोग हैं जिन्हें पिता और बेटा बुरे लोग कहते हैं।
हाँ, इस कहानी में कोई एक विलेन नहीं है। विलेन तो वो हालात हैं, और इंसान का वो बिगड़ा हुआ रूप।
घूमते हुए गिरोह, नरभक्षी, लुटेरे,
ये वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत छोड़ दी है। और इसका सबसे भयानक उदाहरण मिलता है जब वो एक घर के तहखाने में पहुंचते हैं।
ओह हाँ, वो तहखाने वाला सीन, वो तो रोंगटे खड़े कर देता है।
उस तहखाने में उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को नग्न, कमजोर हालत में जानवरों की तरह कैद करके रखा गया है,
खाने के लिए।
हाँ, भोजन के स्रोत के तौर पर। वो इंसानियत के पतन का चरम है। पिता और बेटा वहां से भाग निकलते हैं, और उनका ये डर और पक्का हो जाता है कि सबसे बड़ा खतरा इंसान ही है।
इसी वजह से वो इतने अकेले और सतर्क रहते हैं हमेशा।
अच्छा, अब कहानी के सफर पे थोड़ा और आगे चलें। प्लॉट कैसे बढ़ता है?
कहानी सीधी है, लीनियर। वो पहले से ही सफर पर है जब कहानी शुरू होती है। रोज का वही रूटीन है, सामान ढूंढना, छिपना, आगे बढ़ना। शुरू में ही एक मुठभेड़ होती है।
हाँ, उस सड़क छाप गिरोह वाले आदमी से बेटे को बचाने के लिए पिता को गोली चलानी पड़ती है।
ये बेटे के लिए एक तरह का दीक्षा संस्कार है इस क्रूर दुनिया में, और पिता के रक्षक वाली भूमिका पक्की हो जाती है। इसके बाद ही वो तहखाने वाली खोज होती है।
लेकिन कहानी सिर्फ निराशाजनक नहीं है, बीच में कुछ राहत के पल भी आते हैं, जैसे वो बंकर का मिलना।
हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लगता है। जब वो बिल्कुल थक चुके होते हैं, भूखे होते हैं, तभी उन्हें जमीन में एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है,
और नीचे एक सुरक्षित बंकर, शायद किसी ने प्रलय की तैयारी में बनाया होगा। वो एक जन्नत जैसा है उनके लिए।
क्या मिलता है उन्हें वहाँ?
अरे, खाने का बहुत सारा सामान, डिब्बा बंद चीजें, पीने का पानी, बिस्तर, साबुन, सब कुछ। कुछ दिनों के लिए उन्हें गर्मी मिलती है, पेट भर खाना मिलता है, सुरक्षा मिलती है।
पुरानी दुनिया की एक झलक।
बिल्कुल, उन्हें थोड़ी शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है। लेकिन पिता को पता है कि वो वहाँ हमेशा नहीं रह सकते।
क्यों? वो इतना सुरक्षित है तो?
क्योंकि ऐसी जगह दूसरों की नज़र में आ सकती है,
वो निशाना बन सकते हैं, उन्हें चलते रहना होगा।
तो ये फिर से उसी बात पर जोर देता है कि यात्रा ही उनका सच है, सुरक्षा बस एक भ्रम।
उनका वहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है, खासकर बेटे के लिए।
इसके बाद वो एली नाम के बूढ़े आदमी से मिलते हैं। वो भी एक यादगार मुलाकात है।
पिता को तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन बेटा, उसकी दया, वो उसे खाना खिलाते हैं। एली का किरदार एक तरह से पूरी तरह हार मान चुके इंसान का है, शून्यवादी,
जो पिता की हताश उम्मीद के ठीक उलट है।
बिल्कुल। और फिर वो घटना होती है जब उनका सब कुछ लुट जाता है।
हाँ, वो चोर जो उनकी शॉपिंग कार्ट ले भागता है। हाँ। उनकी पूरी दुनिया उस कार्ट में है।
पिता गुस्से में उसे ढूंढता है, बंदूक की नोक पर उसे न सिर्फ सामान वापस लेता है, बल्कि उसे कड़ाके की ठंड में नंगा करके छोड़ देता है।
ये पिता का एक बहुत डार्क मोमेंट है।
हाँ, लेकिन बेटे पे इसका बहुत गहरा असर होता है। वो उस चोर के लिए रोता है।
हाँ, और ये पिता को भी सोचने में मजबूर करता है। वो नैतिक रेखा, वो धुंधला रही है। क्या हम अभी भी अच्छे लोग हैं? ये सवाल फिर खड़ा हो जाता है।
महीनों चलते हैं वो, और आखिरकार तट पर पहुंचते हैं, उनकी मंजिल।
लेकिन वहां क्या है? वही निराशा। समंदर भी भूरा है, मरा हुआ सा। जिस उम्मीद से आए थे वो भी खत्म।
हाँ, एक जहाज मिलता है वहां फंसा हुआ, उसे कुछ सामान मिल जाता है, फ्लेयर गन भी, लेकिन तट कोई स्वर्ग नहीं है।
और यहीं से पिता का अंत भी शुरू हो जाता है।
तट के पास एक शहर में, खंडरों में, एक आदमी तीर चलाता है।
हाँ, वो तीर पिता के पैर में लगता है। पिता फ्लेयर गन से उस आदमी को मार देता है, लेकिन जख्म बढ़ जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी खांसी बहुत बढ़ जाती है। वो समझ जाता है कि अब वक्त खत्म हो रहा है।
उसके आखिरी पल बेटे के साथ।
वो शायद उपन्यास का सबसे मार्मिक हिस्सा है। वो बेटे को तैयार करता है आगे के लिए, उसे अपना प्यार जताता है, और वो जिम्मेदारी सौंपता है आग जलाए रखना।
उसे सेप है कि वो चलता रहे, उसे मन में बातें करता रहे, और अच्छाई का रास्ता कभी न छोड़े।
और फिर एक रात जंगल में वो चुपचाप मर जाता है।
बेटा अकेला रह जाता है। 3 दिन तक वो पिता के शव के पास बैठा रहता है।
फिर एक और आदमी आता है। वो एक परिवार के साथ है, पत्नी, बेटा, बेटी।
वो भी अच्छे लोग लगते हैं।
थोड़ी बातचीत के बाद बेटा उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है।
यही उपन्यास खत्म होता है। लड़का एक नए परिवार के साथ चल पड़ता है, अंधेरे में एक बहुत बहुत हल्की सी उम्मीद की किरण।
लेकिन आखिरी पैराग्राफ, वो ट्राउट मछलियों वाला, वो याद दिलाता है कि जो खो गया वो वापस नहीं आ सकता। दुनिया को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता।
हाँ, एक गहरे नुकसान का एहसास और एक अनिश्चित शुरुआत की संभावना, दोनों एक साथ।
अगर हम इसके मूल विषय की बात करें तो सबसे ऊपर क्या आता है?
मेरे ख्याल से माता पिता और बच्चे का वो बिना शर्त वाला प्यार, अनकंडीशनल लव, वही इस कहानी का दिल है।
ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ खत्म हो गया है, वही एकमात्र सच बचा है। बिल्कुल, वही प्यार उनके सफर को ताकत देता है, उनके होने को मतलब देता है।
और दूसरा, वो अच्छाई बनाम बुराई का संघर्ष, आग जलाए रखना।
हाँ, ये कोई साधारण नैतिक चुनाव नहीं है, ये ज्यादा बुनियादी लड़ाई है। अच्छा होना एक एक्टिव चॉइस है यहाँ, मुश्किल चुनाव।
क्रूरता और निराशा के सामने दया और उम्मीद को जिंदा रखने की जिद।
हाँ, आग जलाए रखना इसी जिद का प्रतीक है, इंसानियत की उस चिंगारी का।
लेकिन क्या उम्मीद करना जायज है इसी दुनिया में? उपन्यास ये सवाल भी पूछता है।
हाँ, पिता की उम्मीद बड़ी थकी हुई सी लगती है कभी कभी। बेटे की उम्मीद ज्यादा स्वाभाविक है, अंत भी कोई सीधा जवाब नहीं देता। शायद दुनिया वैसी ना हो पाए, पर अच्छाई के छोटे छोटे काम, इंसानी रिश्ते, शायद यही उम्मीद है।
और ये सवाल कि जिंदा रहने की क्या कीमत है, क्या सिर्फ जिंदा रहना काफी है?
यह इंसान बने रहना ज्यादा जरूरी है। पिता को हिंसा करनी पड़ती है। वो रेखा बहुत धुंधली है उत्तरजीवी और वहशी के बीच। सच्चा जीना शायद अपनी आत्मा को बचाना है।
यादें और कहानियां भी बहुत अहम है। पिता अतीत से जुड़ा है, कहानियां सुनाकर वो जैसे खोए हुए मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है।
और आस्था का क्या, भगवान कहाँ इस दुनिया में?
किताब में धार्मिक भाषा है, प्रतीक है, पर लगता है जैसे ईश्वर ने मुंह फेर लिया है। बेटे को जरूर एक पवित्र छवि दी गई है।
शायद उपन्यास ये कह रहा है कि पवित्रता अब इंसानी रिश्तों में है, बच्चे की मासूमियत में है, उस प्यार में है जो सब मुश्किलों के बाद भी बचा रहता है।
मैकार्थी की स्टाइल, उसकी बात करना भी जरूरी है। वो भाषा इतनी सटीक, इतनी कम।
हाँ, जैसे वो खुद उस बंजर दुनिया का हिस्सा हो। कम से कम शब्द, जैसे हर शब्द जरूरी हो।
और वो पंक्चुएशन का कम इस्तेमाल, खासकर डायलॉग में कोटेशन मार्क्स का ना होना। बातचीत बड़ी सपाट और सीधी लगती है।
छोटे छोटे वाक्य एक लय बनाते हैं, जैसे कोई मार्च चल रहा हो। और कभी कभी और शब्द का बार बार इस्तेमाल, वो भाषा को एक वजन देता है।
प्रतीक भी बहुत है। सड़क सिर्फ सड़क नहीं, जीवन की यात्रा है। आग मानवता है, पिस्तौल जिंदगी भी है और मौत भी।
और वो बिम, राख, ठंड, भूरा रंग, पूरी दुनिया बेरंग लगती है। इसीलिए जब कभी रंग आता है पिता के सपने में या खाने के डिब्बे में, तो वो बहुत असर करता है।
हाँ, जैसे अंधेरे में एक रोशनी, इसे एक रूपक की तरह भी देख सकते हैं, जीवन की यात्रा का या सभ्यता के नाजुक होने का।
पिता के फ्लैशबैक भी वो अतीत और वर्तमान का अंतर दिखाकर दर्द को और बढ़ाते हैं।
इसे पढ़ना आसान नहीं है, भावनात्मक रूप से थका देता है।
हाँ, पर अंत में एक तरह का कैथार्सिस भी है। निराशा जितनी है, प्यार भी उतना ही गहरा है। पाठक शायद खाली महसूस करे, पर इंसानी रिश्ते की ताकत का कायल हो जाता है।
और शायद अपनी जिंदगी के छोटी छोटी चीजों की कीमत समझ आती है। खाना, गर्मी, सुरक्षा, अपनों का साथ।
मेरे लिए तो ये कहानी ये याद दिलाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी प्यार और अच्छाई को चुनना, यही हमें इंसान बनाता है।
और ये कि आग जलाए रखना, वो सिर्फ जिंदा रहने से कहीं ज्यादा है। वो अपनी इंसानियत बचाने की लड़ाई है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।